जायाधान किये कम कलं कडहे नीच निरंजन नानमहु ते परमापनवे।
मन की विशुद्धि के अभाव में आत्म उपलब्धि नहीं, यह प्रसंग चल रहा। मन की विशुद्धि है क्या नहीं, यह बात हम कैसे जाने, तो आगे के भाव से हम स्पष्ट कर ले। पंचेन्द्रीय विषयम दर्शयते, पंचेन्द्रीय के वशभूत हुआ व्यक्ति कभी भी मन को शुद्ध नहीं रख सकता। एक व्याप्ति है, पंचेन्द्रीय के विषय नहीं है, ये बात बता रही है कि उसका मन शुद्ध नहीं है। देखने के बारे में, सुनने के बारे में, सूंघने के बारे में, सुनने के बारे में, खाने के बारे में, छूने के बारे में, आदि आदि जो पंचेन्द्र के विषय हैं, कि अधीन होना, इसका अर्थ अधीन कौन हो रहा है। इंद्रियां अधीन नहीं होती कभी, किंतु मन के रूप में परिणत जो उपयोग है वही उसका मूल उद्देश्य है, उसी का नाम मन। तो मन में अशुद्धि पंचेन्द्र के विषयों के माध्यम से बाहर आती है, ये इसका भाव। ये पंचेन्द्रिय कर हड़ा, ये मोकला मचा, चरि अशेष विषय बनु, करभक बोलते हैं, ऊंट शीघ्र गामु का करभक ऐसा नाम अदा में आता है। तो क्या पंचेंद्री के जो ये ऊंट हे जीव मुक्तान मात चरे, इनको स्वच्छंद छोड़ करके मत चराओ, इसकी वशभूत होकर के मत चराओ, क्योंकि यह विषय के मन को पूरा का पूरा चरण करके तुम्हें संसार में पार देंगे। एक जब छोटे थे उस समय कथा थी, ये ऊंट गन्ना खाने के लिए गया, गन्ना अच्छा लगा, खाता बैठा, इसकी वशीभूत हुआ, पेट उसका बहुत बड़ा और वह पेट भरने तक खूब खाने लगा। जब डकार आ गई, डकार आते ही आवाज चले गई, आवाज होते ही वह मालिक आ गया और उसको पिटाई प्रारंभ कर। ये संक्षेप कथा। इसी प्रकार यदि पंचेन्द्रिय के विषयों में अपनी आंख की लगा दोगे, बात आती है, उसका सियार है उसके साथ, नरी नरी मधुवंटी सियार और ऊंट की कथा, जब तुम्हें समय पर आ जा बता दे। अभी तो बता दिया, ये पंचेन्द्रिय के ऊंट यदि इनको स्वच्छंद होकर के विषयों की ओर ले जाओगे, निश्चित बात है कि इसको इसमें लग करके अंत में संसार में उसे डाल देंगे। ये ते प्रत्यक्षी भूता अतीन्द्रिय सुख आस्वाद रूपात्म परमात्मान सकाशात प्रतिपक्ष भूता पंचेन्द्रिय करहदा उष्ट्रा। ये पंचेन्द्रिय क्या वस्तु है? पंचेन्द्रिय का अर्थ तुम नहीं हो, किंतु तुम थोड़ी सोचो, ये पंचेन्द्रिय अतीन्द्रिय सुख आस्वाद रूप जो परमात्म तत्व है उससे बिल्कुल भिन्न प्रतिपक्ष भूत है। प्रतिपक्ष का कभी भी समर्थन और कभी भी पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से दीर्घ संसार होता है, ये मिथ्या भ्रमणा है। तुम पंचेन्द्रिय नहीं हो, तुम तन नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, इसलिए तन के पोषण, इंद्रियों के पोषण, मन के पोषण से संसार का विकास होता, संसार का विकास होता है तो आत्मा का नाश। प्रतिपक्ष भूता पंचेन्द्रीय कर हे मूढ़ जीव, स्वशुद्धात्म भावनोत वीतराग परमानंद एक रूप सुख परानुख भूता, अपने शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानंद एक रूप सुख, उससे परानुमुख होते हुए स्वेच्छया माचार्य, ये स्वच्छंदता के साथ इन पंचेन्द्रिय के वशभूत होकर के तुम आचरण मत करो। यत किं कुर्वन्ती, क्योंकि ये पंचेन्द्रिय क्या कर देते हैं, पातयन्ती, गिरा देती हैं। कहाँ गिरा देती हैं, भवन में। कम जीवम, तुम्हें स्वयं को वो संसारे निस्सार शुद्धात्म प्रतिपक्ष भूते पंच प्रकार संसारे सार से रहित शुद्धात्मा के प्रतिपक्ष जो पांच प्रकार का संसार है उसमें तुम्हें गिरा देगा। चरित्वा भक्षणम कृत्वा पंचेन्द्रिय विषय वनम इति अभिप्राय, पंचेन्द्रिय के विषय इतना जंगल जंगल है, खूब जंगल जंगल है, खूब उसको खूब चरते चले जाओ, परंतु जीवन समाप्त हो जाएगा, बस मिट जाएंगे। इंद्रियां तो कुछ काम करेगी नहीं, किंतु इंद्रियों के माध्यम से जो विषय भोग भोगने वाला था वो निश्चित रूप से चला जाएगा। बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्यायुष, संसार में भटकते चले जाओ सागरों को आए तक कोई भी ठिकाना नहीं। ये पंचेंद्र के विषय और मन के विषय के कारण ही संसारी प्राणी भटक रहा है, इसके अलावा संसार में और कुछ नहीं। और पंचेंद्र के विषय के कारण पांच पाप कर लेता है और मन की खाना पूर्ति करने के लिए और पाप कमाता जाता है, और उसके बदले में चौरासला की उन्हीं में भटक करके उसको पूर्ण कर लेता। एक कर्म को पूर्ण किया ही नहीं अपनी आयु स्थिति के अनुसार, दूसरा पुनः बांध लेता है, वह उदय में आ जाता रट के समान। क्या बोलते हैं आप, रट यंत्र, रट रहट, रहट रहट बोलते हैं, रहट रट नहीं, रहट रहट के समान। एक खाली नहीं होता हुआ नहीं, दूसरा भर करके आ जाता है। एक खाली हुआ नहीं, दूसरा भर करके आ जाता है। या शांति धारा बड़ी लंबी होती है ना, शांति धारा जल की, तो शांति धारा करते करते वहां 10-15 मिनट मान लो मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, तो छोटी सी मान लो कलशी ले ली तो उसमें एक व्यक्ति भरता रहता है और वह धारा टूटती नहीं है। तो उसी प्रकार यह संसारी प्राणी अखंड धारा तो पंचेन्द्र के विषयों की अपेक्षा से या कर्मों की अपेक्षा से देख लो, यह एक चूका नहीं, दूसरा उसके पीछे, दूसरा चूका नहीं, तीसरा पीछे, अखंड ये धारा अनंत काल से आ रही है। अब आपको सावधान होना है, सोचना है, जब यह धारा आज तक टूटी नहीं तो आगे कैसे टूट सकती है विषयों के माध्यम से। विषयों के माध्यम से तो टूटने का सवाल नहीं उठता, इसलिए विषयों को छोड़ा जा सकता है, विषयों के माध्यम से पूर्ति नहीं की जा सकती इच्छा की, इच्छा की निवृत्ति की जा सकती, इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है। पंचेन्द्र विषय वनम इति अभिप्राय, ध्यान वैषम्यम कथयति, ध्यान की विषमता क्या है ये बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जोई अविषमी जोई गई, मनुसंथवन न जाय, इंद्रिय विषय सुखड़ा, इत्थु जीव जीव दि जाय। हे योगिन, योग गति विषमा मन संस्थापित न याति, योग गति मैंने ध्यान की प्रणाली, कैसी प्रणाली, विषम, जो आर ध्यान रौद्र ध्यान में घुला हुआ व्यक्ति कभी भी मन को स्थिर कर नहीं सकता है, मन संस्थापयितुं न याति का योग गति कथं भूता विषमा हे योगिन, जो विषम की योग गति मैंने ध्यान की प्रणाली है यार, ध्यान रुद्र ध्यान आत्मा, उसके माध्यम से कभी भी मन स्थिर नहीं हो सकता। और मन को स्थिर करने के लिए तुम इंद्रियों के विषयों को में यदि सुख मानोगे तो पुनः पुनः इंद्रियों के विषयों के लिए मन वहीं जाएगा। स्वयंभू सूत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने चौथे नंबर वाले कौन अभिनंदन भगवान की स्तुति करते हुए कहे हैं कि वहां पर कोई गुण नहीं, कोई कार्य नहीं होता इंद्रियों के विषयों के सेवन से, और उसमें लोलुपता और बढ़ती जाती, त्रिशोन संगा नच ताप शांति प्रतीद माख्यत भगवान ने प्रतीद वित्तम भगवान व्यज्ञपत इति इत्थम भगवान व्यज्ञपत कथितवान या त्रिशोन संगा नच ताप शांति। त्रिशाक का जो अनुषंग है उसके द्वारा ताप की शांति नहीं होती, नचेन्द्रियार्थ अल्प सौख्यत की विषयों के अर्थ, तो पंचेंद्र के विषय अल्प से कभी भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, टुकड़े 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 होकर के जो सुख मिलता है इंद्रियों का उससे कभी भी ताप की शांति नहीं होती, बल्कि पुनः त्रिशोन शंगा त्रिषा की पुनः अनुषंग उसमें होती चली जाती है। नच ताप शांति ताप की शांति नहीं होती, पंचेंद्र के विषयों के द्वारा तृप्ति नहीं होती, पुनः पुनः मन वहीं पर चला जाता है। एक नहीं एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि थक जाएंगी इंद्रियां, थकती नहीं यही तो बात है, क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, शरीर जीर्ण हो जाता है तो पुनः नया शरीर मंगा लेता है, कैसे नहीं होगा, तृष्णा पूरी होगी नहीं, यही तो तृष्णा पूरी होती जैसी लगती है, यही तो भ्रम है। लगता है पानी बहुत प्यास लगी थी, एक लोटा ठंडा ठंडा पानी पी लिया, शरबत पी लिया तो है कितने प्रसन्नता हो गई, बोला नहीं जा रहा था अब तो खूब बोलने लगे, है तो इसमें कुछ चमत्कार तो है, बस अब वह शाम का प्रबंध कर देता है, सुबह कर देता है, मध्यान्ह का कर देता है, कल का कर देता है, गर्मी पूरी की प्रबंध कर लेता है, ये व्यवस्था नहीं होती है तो पुनः गर्मी में वो काम करने लग जाता है, व्यवस्था पूर्ण कर लेता है, फिर बाद में काम, फिर इस जीवन के नहीं है अगले जीवन जाना है, जाने से पूर्व में देखो तैयारी पुण्य पाप वो है क्या नहीं देख लो, अच्छे धर्म कर्म कर लेता है, धम्म भोग निमित्त बंधु कैसा चक्कर है, नचान नचताप शांति रीति निमित्तम भगवान में जी हे योगिन विषमा योग गति ही तस्मात क्यों जाए निःशुद्धात्म निज शुद्धात्मनि अति चपलम मरकट प्रायम मनो धर्तुम न याति, क्योंकि बंदर के समान मन को वह निश्चल नहीं बना सकता है। तदपि कस्मात् क्यों इंद्रिय विषय जो यानी सुखानी इंद्रिय विषयों में जो सुख है, सुख वीता परमालाद समरसी भाव परम सुख रहिता नाम राग से रहित आह्लादमय समरसी भाव से जो सुख है उससे जो वंचित है ऐसे उनके लिए अनादि वासना वाचित पंचेंद्रिय विशेष सुख आस्वाद आसक्ता नाम अनादि काल से वासना से वाचित जो पंचेंद्रिय विशेष सुख है उसके आस्वादन में जो आसक्त है ऐसे जीवों को पुनः पुनः तत्रैव गच्छति इति है, पुनः पुनः वही वही पर वह जाता है, ये इसका भावार्थ है। मन कैसा है तो बंदर की उपमा दी गई, ये भी कम है, बंदर एक है और वह उसको क्या कर दिया, किसी ने कहीं पानी चला गया और पानी के स्थान पर शराब मिल गई, पी लिया કોઈ સિવંદર થાય દાલ દાલ પડતા તો પાંચ પાંચ વાર ઓડી લગા. અબ ઇસકે ઉપરાંત ઇધર ઉધર ઉચલ કૂદ મચતે હોય સમય ઉસકો એક બિચ્છુને ડંક માર લિયા, હો ગયા. અબ ક્યા હો ગયા? ઔર હો ગયા. શરાબ તો પી રખી થી, બિચ્છુ ઔર કાટ લિયા, ચંચલતા ઔર બઢ ગઈ. ફિર ઇસકે ઉપરાંત વો પાગલ હો ગયા. ફિર કહેના હી ક્યા? ઉસકા મન તો અબ સ્થિર હોને વાલા નહીં. યે ફિર ભી અનુપાત સે બહોત કામ હૈ. સંગી પંચેન્દ્રી ઔર ઉસમે ભી મનુષ્ય ઔર મનુષ્ય મે ભી ક્યા બતાએ, સબ કુછ સમૃદ્ધશાલી હો ઔર ઉસકા મન પંચેન્દ્રી વિષયો મે રમ રહા હો તો ફિર ઉસકો કોઈ સ્થિર નહીં કર સકતા. બ્રહ્મા ભી આકર કે ખડે હો જાએ આપકી સેવા મે, વૈસે નહીં કર સકતે લેકિન ફિર ભી સંભવ નહીં હો સકેગા. બ્રહ્મા ભી વિચલિત હો જાયેગે, બિલકુલ નિશ્ચિત વાત હૈ. આપકા મન વિષયો મે લગા હૈ ઔર કિસી પ્રકાર સે ઉસકો શાંતિ બના દે, સંભવ નહીં, વો ઠિકાના નહીં. ઇસીલિયે પંચેન્દ્ર કે વિષયો કે શરણ મે જાઓગે તીન કાલ મે સહારા મિલને વાલા નહીં. કુછ હો જાય લિખ લાલો, યે સંભવ નહીં. ન ભૂદો ન ભવિષ્ય દે, એસા કોઈ કાલ આ જાયેગા જિસ કાલ મે હો જાયેગા, એસા સંભવ નહીં. જબ કભી ભી પંચેન્દ્ર કે વિષયો સે વિમુખ હોગે તભી આપકા કામ હોગા. પંચેન્દ્ર કે વિષયો મે રહેતે હુએ હમ મન કો લગાના ચાહે નહીં, મન તો વિષયો મે લગેગા, આત્મા મે નહીં લગ સકતા. મરકટ કે સમાન પ્રાય કા મતલબ યે હૈ કે જિસ પ્રકાર મરકટ પ્રાય, કુછ મરકટ ભી એસે હોતે હૈ કે જો ચંચલ નહીં ભી હોતે હૈ. કઈ મરકટ એસે હોતે હૈ જો ચંચલ નહીં હોતે હૈ. જંગલી હોતે હૈ વો કમ ચંચલ હોતે હૈ, ઔર ગાંવ કે જો હોતે હૈ લાલ સુખ વાલે હૈ હા વો થોડે વિશેષ ચંચલ હોતે હૈ. હા દોસ્તી તો ઉનકી હો જાતી હૈ, મિત્રતા તો બના લેતે હો, લેકિન આપકો ફિર ખાને નહીં દેંગે. હા કૈસે ભી લગતો સબ કુછ ખોલ દેંગે હો હૈ. હા વો ગાંવ મે રહેતે હૈ ઇસલિયે. તત્રે ભગત તલ સંખ્યા બાહ્ય પ્રક્ષેપ, અબ જો સૂત્ર કે ક્રમ પ્રક્ષેપ કે રૂપ મે આ રહા હૈ. જો જોઈ જો જોગ ભઈ તમ તનુ નાનુ ચરે, જોય વિ પંચ ભાઈ રહો, છાયંત પરમા. હે યોગી, જો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર મે જોગ વહી વહ અપને આપ કો લગા લેતા હૈ તો હી પંચબ બાહ્ય મને પાંચેન્દ્ર કે વિષયો સે વો બાહ્ય હો જાતા, મતલબ ઉસમે વહ નહીં રહેતા, અપને આત્મા મે આ જાતા હૈ. ઉસ સમય વહ પરમાત્મા કા ધ્યાન કર સકતા હૈ. પરમાત્મા કે ધ્યાન સે હી પંચેન્દ્ર કે વિષયો કી વૃત્તિ છૂટ સકતી હૈ. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કી શરણ મે જાને સે યે કામ હો સકતા હૈ. સયોગી ધ્યાની ભન્યતે, વહ યોગી ધ્યાની માના જાતા હૈ. યે કિમ કરોતે, વહ ક્યા કરતા હૈ? યે કરતા પ્રતિપાલયતિ રક્ષતે. વહ કરતા પ્રતિપાલન કરતા રક્ષિત કરતા કિસકો? નિશુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય સમ્યક, શ્રદ્ધાન જ્ઞાન અનુચરણ રૂપમ, નિશ્ચય ચારિત્ર. જો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કે અનુરૂપ નિશ્ચય ચારિત્ર કા પાલન કરતા હૈ વહી યે સબ કુછ કર સકતા. કિમ કૃત્વા? ભૂત્વા, પહેલે હો કરકે. કૈસે હોતા હૈ? કતમ ભૂત? બાહ્ય, બાર હોતા. કેભ્ય? અચ્છા, પંચ પંચ પરમેશ્વરી ભાવના પ્રતિપક્ષ ભૂતેભ્ય. પંચમ ગતિ સુખ વિનાશ કેભ્ય? પંચેન્દ્રિયભ્ય. દેખો પંચેન્દ્રિય કે વિષય કે કારણ પંચ પરમેશ્વરી ભી મન નહીં લગતા, और अपनी निःशुद्ध आत्मा में भी मन नहीं लगता। ये काम करते हैं पंचेंद्र के विषय। और पंचेंद्र के विषय अपने आप में कुछ नहीं है, मन की चंचलता। वह मन की चंचलता के कारण पंच परमेश्वरियों में भी मन नहीं लगता और न ही अपने आत्मा में लगता। जो लगा रहे हैं उनके लिए भी वह डिस्टर्ब कर सकता। पंचेंद्र के विषयों में जो लुलुपता रखता है, जो मन के अधीन हुआ है, वह व्यक्ति क्या क्या काम नहीं कर सकता, सब कुछ कार्य करके आए हैं। इसलिए उससे बाह्य होना ही आवश्यक है। क्यों कुर्बान है? उस समय योग शब्द अर्थ कथ्य। योग शब्द का क्या भाव है बताया जा रहा। युज समाधो इति, युग समाधि के अर्थ में आता है। धातु निष्पन्नत्वेन, इस प्रकार धातु से निष्पन्न योग शब्देन, युग से गुण हो जाता, उ का गुण हो जाता योग, और ज का जो है चवृत्ति का नाम च, तो क बन जाता है, क बन जाता, फिर इसके उपरांत ग बन जाता, तो योग बन गया और ये अन प्रत्यय हो गए। ने अन प्रत्यय ने अप्रत्यय, ऋण प्रत्यय जिसके साथ हो जाता उसके साथ वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। व्याकरण का एक सामान्य नियम है जिसमें टटड़ण है निकल जाता है अनुशंग के रूप में, तो उसके साथ आदिम वर्ण का वर्ण की वृद्धि होती है। अ हो तो आ हो जाए, री हो तो आर हो जाए, ई हो तो ऐ हो जाए, इवर्ण हो तो ऐ हो जाए, उवर्ण हो तो औ हो जाए, ओ का भी औ हो जाए। तो इसलिए युज था, युज था तो उसमें अप्रत्यय हो गया। अप्रत्यय होने के कारण यहाँ पर गुण हो जाता है, गुण में हो जाता है उ का ओ, ई का ए और री का आर होता है, और अ का गुण नहीं होता। क्या होता? आ का आ नहीं रहता, अवर्ण का गुण नहीं होता, अवर्ण की वृद्धि होती है, चाहे वो कातंत्र हो, चाहे जैनेन्द्र हो, चाहे जाटकाय हो, चाहे कौमदेव हो, सब जगह नियम यही है, अ की वृद्धि नहीं होती। आ अ का अ की वृद्धि नहीं होती, लेकिन आ हो जाता कहीं कहीं पर, वह दीर्घ माना जाता। वृद्धि अलग वस्तु है, दीर्घ अलग वस्तु। हाँ ठीक है। अच्छा, तो इस युद्ध धातु से समाधि के अर्थ में जो युद्ध धातु, उस धातु से निष्पन्न योग शब्द के द्वारा वीतराग निर्विकल्प परम समाधि रुच्यते है। वीतराग राग से रहित, विकल्प से रहित जो परम समाधि वह कही जाती है योग शब्द के द्वारा। अथ अनंत ज्ञानादि रूपे स्वशुद्धात्मनि योजनम परिणमनम योग। अब अनंत ज्ञानादि रूप जो शुद्धात्म है उसमें नियोजन करना, परिणमन करना, यही एकमात्र योग है। स इत्थम भूत हो, वह इस प्रकार का योगो यस्य अस्ति इति, योग जिसके पास है वह, स तो योगी ध्यानी तपोधन इत्यर्थः, वह योगी है, ध्यानी है, तपोधन है, ऐसा माना जाता है। अथ पंचेन्द्रिय सुखस्य नित्यत्वं दर्शयति, अब पंचेन्द्रिय सुख में नित्यता नहीं है, अनित्यत्व है, ऐसा दिखाया जा रहा है। विषय सोई बे दिवहडा गुरु दो कह परिवार, कुल देव माई तो अपन खंडे कुहार। विशेष बन दो दिवस के, दो दिन का बाजार है, हैं? क्या क्या कहते ना, चार दिन की चांदी, चार दिन और बढ़ा दिया है इन लोगों ने। दो दिन की बात कही जा रही है यहाँ पर, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो, चार दिन भी ठीक बैठा, मतलब 12-12 घंटे की चांदनी रहती है, तो है तो कुल मिलाकर के दो ही दिन हो गया, ठीक है वो नहीं। चार दिन की चांदनी का मतलब, चार दिन की चांदनी में तो 12-12 घंटे में मिलेगी, तो कुल मिलाकर के वो 48 घंटे हो जाएंगे। नहीं तो दो ही नहीं वो, मतलब जो कुछ भी है सुख वह दो दिन का है, फिर अंधेरी रात है वही बात है कि इसमें आलोचना पाठ में या बारह भवन में आते हैं ना, फिर कृपा और जाली कुतवाली एक दिन कुतवाली क्या है, फिर कृपा और जाली वही बात है। एक दो दिन जो है दिवाली जैसे हो जाती है, फिर उसके उपरांत होली की तरह प्रारंभ हो जाता है, निश्चित बात। फिर भी मुंह का एक ऐसा घना प्रभाव है, यह निमित्त के ऊपर इतना टूट पड़ जाता है कि जैसे इसका जीवन उद्धार हो जाए उस निमित्त के द्वारा, सुख है, शांति है, शरण है, वो है, ये है, दुनियादारी की बातें वह जमा लेता है और अपने आप को भूल जाता है। ये मोह का परिणाम है, मोह का परिणाम ये। अथवा अनंत ज्ञानादि रूपे स्व शुद्धात्मनि योजनम परिणमनम योग, अथवा अनंत ज्ञानादि रूप में जो शुद्धात्म है उसमें वियोजन करना, नियुक्त कर देना, इसका नाम योग है। योग के अर्थ दो है, एक तो नियुक्ति करने रूप, नियुक्त करने रूप, और एक समाधि रूप। स इत्थम भूत योग यश स योगी, इस प्रकार का जो योग जिसके पास होता है उसको योगी बोलते हैं, ध्यानी बोलते हैं, बस भी बोलते हैं, एकार्थवाचक। ये तो हो गया, अच्छा हाँ, विशेष दो 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 दिन का था वह, फिर इसके उपरांत दुख की परिपाटी है। हे भ्रांत जीव, मां वाही थी, अपने आत्मा के अपने कहते ना, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत पटको, यहां पर स्कंद के ऊपर रखा, अपने स्कंद के ऊपर कुठारघात मत करो, क्योंकि विषयों में रच बच जाओगे तो निश्चित है अंधकार में भटकना पड़ेगा। अपने हाथ से अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ा मारना ठीक नहीं है। विषय निर्विषयान नित्यात वीतराग परमानंद एक स्वभावात, विषय से रहित नित्य राग से रहित परमानंद एक स्वभाव हो, परमात्म सुखात परमात्मा के सुख से, यानी प्रतिकूलानि विषय सुखाने, वो सारे सारे प्रतिकूल विषय सुख हैं, वे दिवस हड़ा दिन द्वय स्थायीनी भवंती, दो दिन तक रहने वाले हैं, फिर बाद में भले विशेष स्थिर रह जाए लेकिन आपका जो मन है वह स्थिर नहीं रहेगा। भूख पड़े रहेंगे लेकिन भूखता अन्यत्र चला जाएगा, मन उचड़ जाएगा तो भूख प्रतीक्षित रह जाएंगे लेकिन मन उसको नहीं कर पाए, ऐसे भी लहर आती चले जाएंगे भोग के काल में, वह भोग भोग नहीं सकेगा और भोगों से विमुख होना पड़ेगा उसको, शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो सकता है, विषयों का समागम भी हो सकता है लेकिन पागल हो जाएगा, क्या करेंगे, बिल्कुल शरीर हृष्ट है और भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सब कुछ है क्रियाएं, लेकिन मन बिगड़ गया, पागल हो गया तो वह भोगेगा नहीं। और अन्य भोगी व्यक्तियों के लिए भी वैराग्य का वह कारण और हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह वैराग्य नहीं माना जाएगा। हाँ, घटनाएं ऐसी घटती हैं कि बहुत अद्भुत घटना घट जाती है। एक अपनी बच्ची के माइंड फेल होने के कारण जो बहुत होशियार था उसका भी माइंड लगभग नियर अबाउट फेल हो गया, ऐसे ही बात सुनी। बहुत सुशील बच्ची थी और पढ़ी लिखी थी और उसका विवाह हो गया और कुछ दिन नहीं हुए और वह पागल हो गई, और उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया था वो पिता सोचता अब क्या करें, वो स्वयं पागल होने को हो गया। तो ये बड़ा विचित्र है संसार का खेल, मैं करूं ऐसा कुछ भी नहीं चल सकता। कर्म की चपेट कब आ जाए और किस ढंग से उसको वह लपेट ले ले पता नहीं। पानी की था, अग्नि की था, लग सकती है, हवा की भी था, लग सकती है, लेकिन कर्म किस समय आकर के किस रूप बदल देगा। देवो न जाना कि तो मनुष्य इति नीति वाक्य है, बाकी सब नहीं, जितना कहता हूं उतना सुन लो कि देव भी जान नहीं सकता कि कब किसके जीवन में परिवर्तन कैसा होने वाला है। क्यों अवधिकरण लगा दो, नहीं लगा सकते। इतना ऐसा भाग्य पलटा खा सकता है, कर्म का उदय आ सकता है। इसलिए पुरुषार्थ यही करो, पंती कोशिश हम अनर्थों से बचते चले जाएं। दिनद्वय साइनी भवन्ति पुनः पश्चात दिनद्वयानंतरम आत्मसुख बहिर्मुखेन, फिर दोन के उपरांत आत्मसुख से बहिर्मुख होते हुए विषयासक्तेन जीवेन, विषय में आसक्तवा जीव के द्वारा यानी उपार्जितानी पापानी, जो उपार्जित पाप हैं तद उदय जनिता नाम नारक आदि दुखानाम परिपाटी प्रस्ताव, उसके उदय से उत्पन्न हुए नारक आदि जो दुख हैं उनकी परिपाटी प्रस्ताव चालू हो जाते हैं। एवं ज्ञातवा इस प्रकार जान करके हे भ्रांत जीव तू मां निक्षिपत्वम, इसलिए तुम अपने पैरों के ऊपर या कंधों के ऊपर कुलाड़ा घात मत करो। कुठारम ने आत्मी स्कंदे अपने स्कंद के ऊपर अत्र इदम व्याख्यानम ज्ञात्वा, इस व्याख्यान को जान करके विषय सुखम त्यक्त्वा विषय सुख को छोड़ करके वीतराग परमात्म सुखे चित्त्वा, वीतराग परमात्म सुख में स्थित होकर निरंतरम भावना कर्तव्य इति भावार्थ, निरंतर मात्र अपनी भावना करते रहना चाहिए एकमात्र भावार्थ है। अथ आत्म भावनार्थम यो असो विद्यमान विषयान त्यजति, अपने आत्मा की शुद्धात्मा की भावना के लिए जो विद्यमान अपने हाथ में मिले हुए हैं ऐसे विषयों को छोड़ देता है, नहीं मिले तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन मिलने के उपरांत छोड़ देना चाहिए। तत् प्रशंसा करोते, क्या गंगा में गए थे एक व्यक्ति तीर्थ मान करके, कई व्यक्तियों से सुना था गंगा में चले जाओगे तो कम से कम वहां पर तुम्हें भी कुछ न कुछ समर्पण करना होगा। करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अवश्य हम भी समर्पण करेंगे, और वह लोग भी तो था ही, इसलिए हे गंगे हर गंगे हर गंगे कहते हुए उसने उन्हीं में से जल लेकर के हर गंगे और उसने तो देना तो सीखा ही नहीं था, हुई बात थी यूं प्रकार कर रहा था और अंतिम जो है अपने ऊपर के जेब में एक रुपया था, और जब अंत में पानी एक घूट ले ले तीन चार घूट पानी पीने के लिए गई झुक गया और उसके जेब में से वो रुपया बंदा जो रुपया था वह गंगा में चला गया। आओ कहता अरे भगवान एक बाई से दक्षिणा लेने वाला 64 बाई एक साथ कैसी बात, 64 उस समय जब बंदा रुपया था उसमें 64 पाई का एक रुपया होता था, एक आने में 4 पाई 16 आने 16 चौक। अब कैसे करे, वो बार बार डूबने लगा, ऊपर से वो रुपया दिखता भीतर चला जाता नहीं दिखता, बार बार किया और जब वो समय हो गया बच्चा था पता क्या करे, हे गंगे तुम्हारे लिए एक पाई ने एक रुपया अर्पण है। सोचिए विचार करो है? जब एक पाई चढ़ाने की भावना नहीं थी लेकिन अब हाथ से जब निकल ही गया तो गंगा के लिए समर्पण, गंगा यही देवा देवता यही समर्पितम। किसी प्रकार विषय तो मिले नहीं और आप छोड़ दो, ये भी ठीक है, मन से वचन से काय से छोड़ देते तो ठीक, ये जो है उसको भी पहले छोड़ दो। ये बात है,
संत विषय जो परिहर ये बल के जो हौता तो दैवे नज मुंडियो
जा। अच्छा 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 ठीक ठीक बहुत अच्छा। संता विषय जो परिहर, जो अपने पास विषय है तो छोड़ देता है, तो उसकी मैं बलि मैंने पूजा करता हूं, उसकी मैं पूजा करता हूं। बलि का अर्थ पूजा है, ये बहुत अच्छा, बलि का अर्थ पूजा, बलि को मैंने चरु भी होता बलि, इसलिए पूजा के लिए आज जीव को ही लेला बलि लेना चालू कर दिया। एक वह समय था बलि का अर्थ पूजा होती थी, और बलि का अर्थ आज जो है हिंसा, हिंसा का रूप बन गया बलिदान के रूप में। मैं तो उसकी पूजा करता हूं जो होते हुए विषयों को जो छोड़ देता, सो दैवेन ज मुंडी आऊ शीर्षम खलवा दे। अरे भैया बात ऐसी है कि दैवयोग से जो मुंडित हो गया, जिसके पैर मतलब पूरे पूरे गंजे हो गया, उस समय यदि छोड़ दोगे तो क्या मतलब, इससे कोई मतलब तो है नहीं। केश रोज करो जब घने बाल हैं, और जब बिल्कुल ही चांद निकल गए, चाल क्या पूर्णिमा चांद भी हो जाए, आधी चांद क्या पूरी चांद हो जाए, अब उनका क्या केश रोज है। घने घने बाल जो है घुंघराले चिकनाहट कड़े हो, उखाड़े तो उखड़े नहीं तो आनंद क्यों, अब दांत ही नहीं है तो दंत खावन का क्या है क्या नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं 28 मूलगुण के लिए, बूढ़े होने के उपरांत 28 मूलगुण है क्या, 27 मूलगुण है भैया, तू वैसे मूलगुण 27 हो जाए, क्योंकि दांत ही नहीं तो दंत होने नहीं है? और सारे सारे बाल जो उड़ गए, अब केस रोज नहीं, दो ही रोज निकल गए। अब मान लीजिए यदि नासा भी धीरे धीरे गंध धारण नहीं करती, अब क्या दुर्गंध का सुगंध क्या है, अभी ठीक। जब काम आता है उस समय आप करो तो ठीक, नहीं तो क्या। बहुत अच्छा है, लेने में कोई बाधा नहीं, लेकिन तत्संबंध जो निर्जरा होनी चाहिए थी। और कुछ लोग ऐसे कहते, कुछ लोग ऐसे सोच ले क्या भी 3-4 साल और ठहरो ताकि बाल जो कभी उड़ जाए वो भी उड़ जाए फिर बाद में कर ले, ये गलत बात है। तत्संबंध तो निश्चित बात, केस रोज की बात नहीं, केस रोज को मुख्य रूप से ले लो, बाकी और तो हाँ। कटुक विष प्रख्यान किम्पाल फल उपमान लब्ध पूर्व निरुपराग शुद्धात्म तत्वोपलंब रूप निश्चय धर्म चौरान विद्यमान विषयान, जो कि ये कहते हैं किम्पाल फल के समान अपने फल देने वाले हैं, और शुद्धात्म तत्व के उपलम्ब के निश्चय जो धर्म है उस धर्म को चुराने वाले हैं, ऐसे पंचेंद्रिय विषय होते हैं। अभ्युदय और निश्रेष मार्ग में रूढ़ा अटकाने वाले कोई हैं तो पंचेंद्रिय के विषय हैं, मोक्ष मार्गी नहीं स्वर्गीय सुख के लिए भी रूढ़ा अटकाने वाले पंचेंद्रिय के विषय है। ऐसा नहीं कि अच्छे ढंग से पंचेंद्र के विषय को भोगते जाओ और स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन हो तो मिल जाए, नहीं तो भवनत्रिक में है ही। हाँ व्यवस्था तो विद्यमान विषयान जो परिहर ही परिहर थे छोड़ देता तासु बलिम पूजा करो मैं तस्य अहम इति उसकी मैं पूजा करता हूँ देवावि तस् परमंति जस मे सया मनो श्री योगेंद्र देव स्वकीय गुणानुरागम प्रकटयन्ते। स्वयं योगेंद्र देव कह रहे हैं मैं तो पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ने वाला और मन को अपने कंट्रोल में रखने वाला को तो पूजा करना चाहता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, ये गुणों के प्रति उनका अनुराग है। विद्यमान विषय त्यागे दृष्टान्त, विद्यमान विषय के त्याग में दृष्टान्त बताया जा रहा। सो दैवेन जी मुंडिय वो स दैवेन मुंडिता, वो दैव के द्वारा जो मुंडित हुआ सिर है खटुआ खलवाटम यसे थी, अच्छा गंजिया हो गया, गंजिया भी नहीं कहना चाहिए, गंजिया का अर्थ ये होता है कि सफेद बाल आ जाए, नहीं पूरे निकल जाए, अच्छा बाल नहीं तो गंजी हो गए, अच्छा बहुत अच्छा। अत्र पूर्व काले देवगमनम दृष्ट्वा सप्तर्षी रूपम धर्मातिशयम दृष्ट्वा अवधि मनपरे केवल ज्ञानोत्पत्तिम दृष्ट्वा भरत सगर राम पांडवादिकम अनेक राजादि राजन मणि मुकुट किरण कलाप चुंबित आधार बिंद जन धर्म रतम दृष्ट्वा परमात्मा हवनार्थम ये जन विद्यमान विषयान विषय त्यागम कुर्वन्ति तद भावना रतानां दान पूजादिकं च कुर्वन्ति तत्र आश्चर्यं नास्ति। इदानीं पुनः देवागम परिहीने काले अत्से वर्जिते केवलोत्पत्ति हीने तु अल चक्र धर विजिते इति श्लोक लक्षणे दुष्टम काले यद कुर्वन्ति तदा आश्चर्यमिति भावत। अच्छा ये अलग है, ठीक है बहुत अच्छा है। इसका भाव ये है, देखो बात ऐसी है कि जिस समय अविज्ञानी वाले मनपरे ज्ञान वाले केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाले चक्रवर्ती इत्यादि जो बलदेव वासुदेव आदि आदि बड़े बड़े जो त्रेसठ सला का पुरुष हो जाते हैं उनके द्वारा धर्म अर्जन किए हुए को देख करके कोई भी शुद्धात्मा की भावना करता और विषय कषाय को छोड़ देता है तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस समय की है कि जो आज तीर्थंकर नहीं बलदेव नहीं चक्रवर्ती नहीं सगरादि के समान और कोई भी विशेष नहीं और फिर भी उनकी अनुपस्थिति में विद्यमान विषयों को जो छोड़ देता उसकी विशेषता अपने आप में बहुत भगवान है, ये बहुत अच्छा है। ये नहीं कर लगा पाए देवागम पर ही यहाँ पर देव भी नहीं आते, आते हैं तो उपचर्ग और कर जाते हैं। हाँ निश्चित बात है कल्पवास देव आज आप लोगों के पास आ नहीं सकते क्योंकि पुण्य काल में ही आते हैं और भवनवासी मोहनवासी योद्ध इत्यादि यंत्र वगैरह यही कहीं उपचार करते रहते, ऐसा काल है ये। अच्छा अर्थ नहीं जमा है ये, अच्छा जरूर छोड़ देता है। देखो जो हिंदी पढ़ो सर, जो देखने में मनो के ऐसा इंद्रायन का विष फल उसके समान ये मौजूद विषय हैं, उसको किम्पाक फल को देखने से कोई भी व्यक्ति उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करता, खाने की ही इच्छा करता क्योंकि उसकी गंध भी बहुत अच्छी लगती है और देखने के लिए भी वो बहुत अच्छा, हाथ लगा दे तो मुलायम भी बहुत अपने ढंग से स्पर्श अलग दे देता है और खाते ही बस खाए जाए उसको इधर उधर न करें थूकने की बात नहीं। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के लिए जो पोषक होता है ऐसा किम्पाक फल के समान ये विषय होते हैं, ये वीतराग शुद्धात्म रस की प्राप्ति रूप निश्चय धर्म रूप रस के छोर है, उनको जो ज्ञानी छोड़ते हैं उनकी बलिहारी योगेंद्र देव करते हैं अर्थात अपना गुणानुराग प्रकट करते हैं, जो वर्तमान विषयों की प्राप्त होने पर भी उनको छोड़ते हैं वे महापुरुषों पर प्रशंसा के योग्य है अर्थात जिनकी संपदा मौजूद है वे सब जाग कर वीतराग के परमागम को आराधे, वे तो सत्पुरुषों से सदा ही प्रशंसा की योग्य है और जिसकी कुछ भी तो सामग्री नहीं है परंतु तृष्णा से दुखी हो रहा है, अर्थात जिसके विषय तो विद्यमान नहीं है तो भी उनका अविनाशी है वह मानिंद है। चतुर्थ काल में तो इस क्षेत्र में देवों का आगमन था, उनको देखकर धर्म की रुचि होती थी और नाना प्रकार की ऋषियों की धारी महामुनियों राजों का आश्रय देकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी तथा अन्य जीवों को अवधि मन पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर सम्यक की सिद्धि होती थी। जिनके चरणारविंद को बड़े बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे, ऐसे बड़े बड़े राजाओं का सेवनीय भरत सगर राम पांडवादि अनेक चक्रवर्ती बलभद्र नारायण तथा मांडलिक राजाओं को जनधर्म में लीन देखकर भव्य जीवों को जनधर्म की रुचि उपजती थी तब परमात्मा भावना के लिए विद्यमान विषयों का त्याग करते थे वे। और जब तक गृहस्थपने में रहते थे तब तक दान पूजा आदि शुभ क्रियाएं करते थे, चार प्रकार के संत की सेवा करते थे। इसलिए पहले समय में तो ज्ञानोत्पत्ति के अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होने का अचंबा नहीं था, अचंबा तो आज के लिए है, लेकिन अब इस पंचम काल में इतनी सामग्री नहीं है। ऐसा कहा भी है कि इस पंचम काल में देवों का आगमन तो बंद हो गया है और कोई अक्षय भी नहीं देखा जाता है, ये काल धर्म के अक्षय से रहित है। धर्म करो तो पल्ले में कर्म और पड़ जाता है, प्राय करके देखने में आता है, तो मतलब वो नहीं, मतलब अक्षय नहीं दिखता और ठोकर लगते रहते हैं इसको देख करके भी, या आज लगता है कि धर्म से कोई होने वाला नहीं है, कर्म ही करे तो अच्छा है, ऐसा लगने लग जाता है। पैरों में इस प्रकार की जो है ना लहरदार चीजें आ जाती हैं, जिसको देख करके पति के मन में भ्रम उत्पन्न होने की सहजता बनी रहती है। धर्म के अत्यय से रहित है ये काल और केवल ज्ञान की उत्पत्ति से रहित है तथा हलदर चक्रवर्ती आदि सलाह का पुरुषों से रहित है। ऐसे दुष्म काल में दो भव्य जीव धर्म को धारण करते हैं, यदि श्रावक के व्रत आचरते हैं यह अचंबा है, वे पुरुष धन्य है, सदा प्रशंसा के योग्य माने गए हैं। बहुत अच्छा। मनोजये कृते सति इन्द्रियजय कृतो भवति इति प्रकटयते। इंद्रियों का विजय का अर्थ यह मन की विजय है, उसके बिना यह नहीं। पंच नायको वश करहु तेन होंति वशि विनाटय तरुवर अवसय तो कहीं पंचानाम नायकम। पांच इंद्रियों के नायक कौन है? मन है, उसको पहले वश में रख दो, वो वश में आ गया तो सब वश में आ गए। मूल यदि उखड़ गया बस सब उखड़ जाएगा और वह हरा भरा देखते रहियो सूख जाएगा, पांच मिनट में परिवर्तन हो जाएगा। आज हरा भरा है अभी कैसा होगा, काट लो इसको, ऊपर ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होता। वर्षा आते ही और देखो सूखा सूखा तो पहाड़ लग रहा है, और एक आध वर्षा होते ही हरा भरा हो जाएगा। इसलिए मूल रहित हो जाएगा तो हरा भरा एक आध दिन में अपने आप ही सूख जाएगा, निश्चित बात है। मूले विनक्षी दरोवर अवश्य सुशंत परिणामी पर मैंने पत्ते फूल फल इत्यादि जो कुछ भी सब सूख जाए। पंच पंच ज्ञान प्रतिपक्ष भूताना पंचेन्द्रियाना वाह, पांच जो समिज्ञा में उसके प्रतिपक्ष के भूत ये पंचेन्द्रिय है। पंच ज्ञान प्रतिपक्ष भूताना पंचेन्द्रियाना अर्थात जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ही इंद्रिय ज्ञान चलता, केवल ज्ञान हुआ नहीं तब तक ज्ञान और केवल ज्ञान। रागादि विकल्प रहित परमात्म भावना प्रतिकूल रागादि विकल्पों से रहित परमात्म भावना से प्रतिकूल दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप प्रवृत्ति समस्त देखा हुआ सुना हुआ अनुभव में लाया हुआ भोग आकांक्षा रूप जो कोई भी समस्त अपध्यान जनित अपध्यानों से उत्पन्न हुआ विकल्प जाल रूपम विकल्प जाल रूप मनोनायकम हे भक्त्या वश करो वश करो विशिष्ट भेद भावना अंकुश बलेन स्वाधीनम विशिष्ट भेद भावना के अंकुश के द्वारा इनको अपने स्वाधीन में रखो अंकुश लगाओ हाथी बहुत बड़ा है अपने आप ही अंडर में आएगा ऊंट बहुत ऊंचा है निश्चित बात है लेकिन कैंच लो अपने आप ठीक होगा रेलगाड़ी तो बहुत लंबी चौड़ी है कैसे करे बहुत जंजीर थोड़ी सी जंजीर यूं कैंच लो अपने आप रुक जाएगा नहीं है तो ब्रेक लगा दो अपने आप रुक जाएगा निश्चित बात है कि पांच इंद्रियों को कैसे रोके मन को यूं कर दो अंकुश तो अपने आप पांच इंद्रिय ठीक हो जाएंगे ये तो ऐसा और कोई यंत्र नहीं है जिसके द्वारा उसको अशुभ कर सकते येन स्वाधीन किम होती उसके स्वाधीनता से क्या होता है अन्य येन वशीकृतेन अन्यानि इंद्रियानि वशी भवन्ति अन्य जितने भी हैं वो सारे तरह वशीभूत हो जाते हैं देखो आपने मान लीजिए संकल्प ले लिया आज हम मीठा नहीं लेंगे और आपकी थाली में मीठे मीठे आ गए मान लो तो आंख देख रही क्या नहीं और नासिका में गंध आ रही क्या नहीं आ रही लेकिन मुंह में पानी क्यों नहीं आता क्योंकि हमने अपने ही इच्छा से ये विकल्प ले लिया कि हम नहीं खाएंगे भले हम खिला सकते हैं ये बात अलग लेकिन खाएंगे मन से यदि नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से तन से खाएंगे और तन से नहीं खाते हुए भी यदि मन से नहीं संकल्प करते हैं तो खाते ही जाते हैं रात में भी खाते हैं दिन में भी खाते हैं देखते देखते भी खाते हैं ये मन के वशभूत हो मन को जिसने कंट्रोल करे नहीं ये नहीं होगा बस यही होगा निश्चित हो जाए इसमें क्या बात लेकिन हम पहले इंद्रियों को तो वशभूत करना चाहें और मन को वशभूत करना नहीं चाहे ये संभव नहीं इसको हटयोग माना जाए हटयोग तो होता ही नहीं कभी हट ही जाता है वो दृष्टांत ये स्वाधीन किम भवती ये वशीकृतेन अन्यानि इंद्रियानि वशी भवन्ति दृष्टांतमाह सरोवर मूले विनष्टे सरोवर का मूल नष्ट होने पर अवश्यम नियमेन सुशिष्यन्ति पर्णानि नियम रूप से जितने भी फल फूल पत्ते वगैरह हैं सब शुष्क हो जाते आवाक्य निःशुद्धात्म तत्व भावनार्थम निःशुद्धात्म तत्व की भावना के लिए येन केन चित्कारेण येन केन चित्कारेण जिस किसी भी प्रकार से जिस किसी भी कारण के द्वारा मनोजय कर्तव्य मन के ऊपर विजय प्राप्त करना अनिवार्य तस्मिन करते जितेंद्रियो मन वशीभूत हुआ जितेंद्रिय निश्चित रूप से होगा मतलब तरीके से काम करने से काम होता है यद्वा तद्वा करने से नहीं होता तथा जो उत्तम येन उपायेन शक्येत संयंतुम चलम मन स एव उपासनीयोत्र न चैव विरमेत ततः जिस उपाय के द्वारा मन चंचल जो मन है वह नियंत्रण नियंत्रण में आ सकता है उस उपाय के द्वारा उस कार्य को कर लेना चाहिए उसमें किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए आलस करेंगे तो पुनः इंद्रियां उत्तेजित होते ही चले जाएंगे इस प्रकार हैं।